जया गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारे जया राधा माधव कुंज विहारे जया राधा माधव कुंज विहारे जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे यशोद नंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारिं यमुना तीरावन चारिं राधा माधव कुंज विहारे जया राधा माधव कुंज विहारे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम ರಾಮ ರಾಮ ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜಯ ರಾಧಾ ಗಿರಿಧಾರಿ ರಾಧಾ ಗಿರಿಧಾರಿ ರಾಧೆ ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಯ ಬಾಲದೇವ ಜಯ ಸುಭದ್ರ ಜಯ ಗೌರನಿತಾಯ 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 ಜಯ ಗೌರನಿತಾಯ ನಿತಾಯ ಗೌರ ಹರಿ ಬಾಲ ಹರಿ ಬಾ ಹರಿ ಬಾಲ ಹರಿ ಬಾ ಜಯ ಜಯ ಪ್ರಭುಪಾದ 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 ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತೀ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಾಮುದೀರಯೇತ್. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಶ ಭದ್ರೇಶು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯ. ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೇ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೇ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಸ್ಕಂದ ಸಾತ್ ಅಧ್ಯಾಯ ದೋ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 11. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಷ್ಣುರ್ದ್ವಿಜ ಕ್ರಿಯಾಮೂಲೋ ವಿಷ್ಣುರ್ದ್ವಿಜ ಕ್ರಿಯಾಮೂಲೋ ಯಜ್ಞೋ ಧರ್ಮಮಯ ಪುಮಾನ್ ಯಜ್ಞೋ ಧರ್ಮಮಯ ಪುಮಾನ್ ದೇವ ಋಷಿರ್ಪಿತೃಭೂತಾನಾಂ ದೇವ ಋಷಿರ್ಪಿತೃಭೂತಾನಾಂ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಚ ಪರಾಯಣಂ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಚ ಪರಾಯಣಂ ವಿಷ್ಣುರ್ದ್ವಿಜಕ್ರಿಯಾಮೂಲೋ ವಿಷ್ಣುರ್ದ್ವಿಜಕ್ರಿಯಾಮೂಲೋ ಯಜ್ಞೋ ಧರ್ಮಮಯ ಪುಮಾನ್ ಯಜ್ಞೋ ಧರ್ಮಮಯ ಪುಮಾನ್ ದೇವಋಷಿರ್ಪಿತೃಭೂತಾನಾಂ ದೇವಋಷಿರ್ಪಿತೃಭೂತಾನಾಂ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಚ ಪರಾಯಣಂ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಚ ಪರಾಯಣಂ
ವಿಷ್ಣು ದ್ವಿಜ ಕ್ರಿಯಾಮೂಲೋ
Vishnu Dvija Kriya Mulo Yajna Dharma Maya Puman Devarishir Pitru Bhutanam Dharmasya Cha Parayanam Bhagavan Vishnu Dvija ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का क्रिया मूल है, जिसका मूल है यज्ञ एवं वेदों में वर्णित अनुष्ठानों के संपन्न करना। यज्ञ साक्षात यज्ञ भगवान विष्णु जो यज्ञ पुरुष कहलाते हैं, धर्ममय धार्मिक सिद्धांतों से पूर्ण पुमान परम पुरुष देव ऋषि देवताओं तथा व्यासदेव एवं नारद जैसे महान ऋषियों का पितृ पूर्वजों का भूतानाम तथा समस्त जीवों का धर्मस्य धार्मिक सिद्धांतों का च भी परायणम आश्रय। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की ब्राह्मण संस्कृति का मूल सिद्धांत यज्ञों तथा अनुष्ठानों के साक्षात स्वरूप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। भगवान विष्णु समस्त धार्मिक सिद्धांतों के साक्षात आगार है और वे समस्त देवताओं महान पितरों तथा सामान्य जनता के आश्रय है। यदि ब्राह्मणों का वध कर दिया जाए तो क्षत्रियों को यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित करने वाले कोई नहीं रहेगा और इस तरह सारे देवता यज्ञ द्वारा प्रसन्न ना किए जाने पर स्वतः मर जाएंगे। तात्पर्य, चूंकि विष्णु ही ब्राह्मण संस्कृति के केंद्र बिंदु है, अतएव हिरण्यकशिपु की योजना विष्णु वध करने की थी, क्योंकि यदि विष्णु का वध कर दिया जाए तो वे ब्राह्मण संस्कृति विनष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण संस्कृति के विनाश होने पर यज्ञ संपन्न नहीं हो सकेंगे और यज्ञ के अभाव में नियमित वर्षा होनी बंद हो जाएगी। यज्ञात भवति पर्जन्यः, इस तरह सारे विश्व में उत्पन्न उत्पात होंगे जिससे देवता पराजित हो जाएंगे। इस श्लोक में हमें स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है कि वैदिक सभ्यता के नष्ट होने से मानव समाज किसी तरह विश्रृंखलित हो जाता है और ब्राह्मणों द्वारा संपन्न होने वाले वैदिक कर्मकांड बंद हो जाते हैं। कलो शूद्र संभवः, क्योंकि आधुनिक जगत की जनसंख्या अधिकांशतः शूद्र है, अतएव ब्राह्मण संस्कृति विनष्ट हो चुकी है और इसे उचित मार्ग पर ले आना अत्यधिक कठिन है। अतएव भगवान चैतन्य ने भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन की संस्कृति की है। जिससे कोई खोई हुई ब्राह्मण संस्कृति सरलता से पुनर्जीवित हो सकेगी। हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। आसुरी जनसंख्या में वृद्धि के कारण ब्राह्मण संस्कृति तो विनष्ट हो चुकी है, कोई क्षत्रिय सरकार भी नहीं है। उल्टे आजकल की सरकार तांत्रिक है, जिसमें कोई भी क्षुद्र मतदान द्वारा सरकारी बागडोर अपना हाथ में लेकर शासन संभाल सकता है। कलयुग में कलयुग के विषक प्रभाव के कारण शास्त्र का क्या खतन है? दास्यु प्रायेषु राजसु सरकार दस्युओं अर्थात लुटेरों की नीतियां धारण करेगी, इस प्रकार ब्राह्मणों की कोई आदेश नहीं मिलेंगे, और यदि मिले भी तो कोई क्षत्रिय शासक नहीं होगा जो उसका पालन कर सके। सतयुग को छोड़कर पहले भी जब असुरों का प्रभाव था तो हिरण्यकश्यपु ने ब्राह्मण संस्कृति तथा क्षत्रिय सरकार को विनष्ट करने की योजना बनाई थी, और वह सारे संसार में अराजकता क्या व्हाट इज दिस फैलाना चाहता था। यद्यपि सतयुग में इस योजना को कार्यान्वित कर पाना दुष्कर था, लेकिन शूद्रों तथा असुरों से पूर्ण इस कलयुग में ब्राह्मण संस्कृति विनष्ट हो चुकी है, और केवल महामंत्र के कीर्तन से ही पुनर्जीवित हो सकेगी। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन या हरे कृष्ण आंदोलन का सूत्रपात ब्राह्मण को सरलता से पुनर्जीवित करने के लिए किया गया है, जिससे लोग इस जन में सुखी तथा शांतिमय रह सके और अगले जन्म में ऊपर उठने की तैयारी कर सके। इस प्रसंग में श्री मध्वाचार्य ने ब्रह्मांड पुराण के यह श्लोक को उद्धृत किया है। विप्रयज्ञादि मूलम तु हरिरित्यसुरम मतम हरिरेव हि सर्वस्य मूलम सम्मतो नृपा। हे राजन, असुरगण सोचते हैं कि हरि या भगवान विष्णु का अस्तित्व ब्राह्मणों तथा यज्ञों के कारण है, लेकिन तथ्य यह है कि हरि ब्राह्मणों तथा यज्ञों सहित प्रत्येक वस्तु के कारण है। अतएव हरि हरि कीर्तन या संकीर्तन आंदोलन के प्रचार द्वारा ब्राह्मण संस्कृति तथा क्षत्रिय सरकार स्वस्थ वापस आ जाएगी और लोग अत्यंत सुखी होंगे। ओम अज्ञात विरांदस्य ज्ञानांजन शलाक चक्षुरोर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरो श्री उतापदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्य श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी हिरण्यकश्यपु का प्रवचन चल रहा है। जैसे आपको ये प्रसंग में मालूम है कि हिरण्यकश्यपु जैसे उनको खबर मिला कि उनके भाई हिरण्याक्ष का वध किया गया है, किसने वध किया, विष्णु ने किया, तब हिरण्यकश्यपु को बहुत गुस्सा आया। वो क्रोध में उन्होंने कहा कि भगवान जो है उन दोनों के हम संतान हैं, दैव और असुर दोनों संतान हैं। जैसे एक पति को दो पत्नियां होती हैं, उनको दोनों को संभाल के समान दृष्टिकोण से देखना होता है। तो अभी विष्णु ने क्या किया, अपनी समभावना को त्याग किया। जैसे पिछले अध्याय में ये स्थापना किया गया है कि भगवान किस प्रकार समभाव रखते हैं, लेकिन ये अध्याय को नहीं समझने की वजह से हिरण्यकश्यपु को ये असुरत्व की भावना आई। दूसरे शब्दों में ये सिद्धांत ये है कि जो व्यक्ति भगवान का स्वभाव या समभावना को नहीं जानता है, नहीं समझता है अपने कार्यों में, वो निश्चित रूप में असुरत्व उसके अंदर प्रवेश करता है। या भगवान को समान, भगवान समान है, ही इज इक्वल टू वन एंड ऑल, ये बात को नहीं जानना ही असुरत्व है। तो ये असुरत्व का स्वभाव की वजह से तो हिरण्यकश्यपु जानता था, क्या जानता था, कि भगवान विष्णु जो है वो ये दोनों के स्रोत है, लेकिन ये भगवान की तत्व को नहीं जानने की वजह से, भगवत तत्व को नहीं जानने की वजह से उनको द्वेष उत्पन्न हुआ भगवान से। क्यों द्वेष उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने सोचा कि मेरे भाई को मारा गया है, किसने मारा, विष्णु ने मारा। और विष्णु ने क्यों मारा, क्योंकि मेरे जो शत्रु है देवता वो लोग जाके उनको प्रार्थना किया। तो अस्तित्व में हिरण्यकश्यपु का शत्रु कौन थे, देवता थे, लेकिन ऐसा असुरों का स्वभाव इस प्रकार माना जाता है, जो मेरे जो दुश्मन है वो दुश्मन का मित्र होता है, वो भी मेरा दुश्मन है। वैसे हिरण्यकश्यपु को कोई ईर्ष्या नहीं थी भगवान से, विष्णु से कुछ ज्यादा कुछ ये नहीं था, वैर नहीं था, लेकिन अभी विष्णु ने देवताओं का बात माना, उनका पक्ष लिया, तो मैं उनको मारूंगा, जिसने मुझे मेरे भाई को मारा तो उनको मैं मारूंगा, तो उनके अंदर इस प्रकार की भावना आई। तो पिछले श्लोक में उन्होंने ये आदेश दिया कि अपने जितने भी सहचरों को, मैं जाऊंगा विष्णु को मारने के लिए, मैं आलतू फालतू छोटे मोटे ब्राह्मण क्षत्रिय जीव है, इन लोगों को देवताओं को मारने के लिए मेरा काम ही नहीं है, ये आप लोग करो, और मेरा सामना अगर करना है तो विष्णु ही को ही सामना करना पड़ेगा, इसलिए मैं ढूंढूंगा विष्णु को और विष्णु को मारने के लिए मैं प्रयास करूंगा, मैं जा रहा हूं विष्णु को मारने के लिए, लेकिन फिर भी आप ऐसे खाली मत बैठो, अपने अनुचरों को कह रहे हिरण्यकश्यपु, आप जाओ पृथ्वी में जाओ, जाके ब्राह्मणों को नाश करो, क्षत्रियों को नाश करो, देवताओं को नाश करो और सारा जगह उत्पात मचा दो। यानी इधर दो वर्ग में बांटा उन्होंने हिरण्यकश्यपु ने, मैं जाऊंगा सीधा विष्णु को मारने के लिए और आप सब लोग जाओ नीचे और जाके क्या करो, सारा ब्राह्मण संस्कृति को भ्रष्ट कर दो, उन सबको मारो, उत्पात मचा दो। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक हिरण्यकश्यपु ने क्यों भेजा, किनको, अपने अनुचरों को पृथ्वी में क्यों भेजा? वैसे उनको मालूम था कि विष्णु ने मारा तो विष्णु को मार सकते थे, लेकिन ये ब्राह्मणों को मारना, अनेक देवता देवी देवताओं को मारना, ये सब इनके साथ ये समाज में उत्पात मचाना, ये संकल्प क्यों किया या इस प्रकार अपने अनुचरों को उनके पास क्यों भेजा? Why did he send his associates to destroy this Brahminical culture? उसका जवाब इस श्लोक में है, 11वां श्लोक में। Why हिरण्यकश्यपु को तो हिरण्याक्ष को मारने वाले विष्णु हैं, वो सीधा जाके विष्णु को मार सकते थे, तो ऐसा क्यों किया? उसका जवाब देते हुए श्रील विश्वनाथ ठाकुर अपनी टीका में कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु इस बात को जानता था कि विष्णु कौन है, विष्णु धर्म का स्वरूप है, ही इज द पर्सनिफिकेशन ऑफ धर्म। जैसे आप इस श्लोक में देखेंगे, धर्ममय, दूसरा लाइन में एक शब्द आता है धर्ममय, तो कृष्ण विष्णु वो कौन है, धर्ममय है, धर्म का मूर्तिमान स्वरूप है। अगर धर्म का मूर्तिमान स्वरूप है तो धर्म को नष्ट किया जाए तो क्या होगा, विष्णु भी नष्ट हो जाएंगे, या धर्म को चोट पहुंचाया जाए तो विष्णु को भी चोट पहुंचेगा। तो वैसे विष्णु को तो मारूंगा, मूल विष्णु को, लेकिन विष्णु का जो प्राण है या विष्णु का जो स्वरूप है वो क्या है, धर्म है, साक्षात क्या, धर्मांत साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म कोई और है नहीं, भगवान का जो शरीर है वो धर्म का स्वरूप है। तो इसलिए उधर अधर्म पहुंचाया जाए या धर्म को तोड़ा जाए वो मुझे और खुशी होगी। यानी साथ साथ में हिरण्यकश्यपु, उनको सामने विष्णु दिखाई नहीं पड़ रहे थे, विष्णु को ढूंढ के मारना था, लेकिन उनके अंदर ईर्ष्या की भावना ऐसी थी, ठीक है जब तक विष्णु ना मिले, जो विष्णु का जो स्वरूप है उनको मैं तोड़ तोड़ के मैं खत्म कर दूंगा। श्री विश्वनाथ ठाकुर इस बात को कहते हैं कि धर्ममय, ये धर्ममय शब्द के द्वारा विनष्ट हे तो विष्णु विनष्ट, विष्णु का नाश किसके द्वारा होगा, धर्म का नाश के द्वारा होगा। तो ये एक बात है। तभी बाद में आया कि देव पितृ भूतानाम, देवताओं को मारो और पितरियों को मारो और अन्य भूताओं भूतानाम इनको जाके मारो, ऐसा क्यों कहा गया है? देवऋषिर पितृ भूतानाम, इनको भी जाके मारो, ऐसा उन्होंने कहा विष्णु। ये तीसरा लाइन में पहला शब्द में आया, देवऋषि पितृ भूतानाम। और हिरण्यकश्यपु को मालूम था कि ये देवता कौन है, विष्णु अंग है, और जितने भी जीव है वो भी विष्णु की शक्ति है। अगर मैं उनको हिंसा करने लग जाऊं, उनको संरक्षण करने के लिए जो छुपा हुआ विष्णु है वो बाहर प्रकट होगा, उसको पकड़ लूंगा, ये दूसरा कारण है। नहीं तो विष्णु को ढूंढ के मारने से हो जाता था, लेकिन हिरण्यकश्यपु को प्रॉब्लम ये था, एक तो भयानक सी ईर्ष्या थी, तो इसके द्वारा उन्होंने सोचा कि मैं चाहता हूं कि धर्ममय, ये धर्म को नष्ट करूं, और धर्म को नष्ट करने के द्वारा ये धीरे धीरे से मैं, मुझे आनंद आएगा, मुझे शक्ति आएगा, और क्योंकि भगवान को मैं विकलांग के रूप में या ऐसा देखूंगा, तो इतना ईर्ष्या उनके अंदर भरा हुआ था। और साथ साथ में विष्णु ऐसा लगता है कि आगे के श्लोकों में आएगा, ऐसा लगता है मुझे मेरे से डर के छुप गया, कहीं अभी दिखाई नहीं पड़ रहा, मतलब कहीं छुप गया है, कहां छुप गया है, सबके हृदय में जाके छुप गया है, कहीं हो सकता है, उसको बाहर निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, उनकी भक्तों को तकलीफ देना होगा। सो देवऋषि पितृ भूतानाम, इनको जाके तकलीफ दो, धर्मस्य च परायणम, क्यों, क्योंकि ये सब लोग कौन है, धर्मस्य च परायणम, ये सब लोग धर्म का शरण लिया है, ये सब लोग धार्मिक बन रहे हैं, धार्मिक प्रवृत्ति वाले हो गए, इसके वजह से विष्णु का पोषण हो रहा है,
तो अगर मैं उनको मत खत्म कर दूंगा, देव ऋषि पितृ और भूतानाम इन सबको मैं खत्म कर दूंगा, तो क्या होगा? अभी विष्णु को आहार नहीं मिलेगा। अगर आहार नहीं मिलेगा विष्णु का मृत्यु हो जाएगा, तो मुझे मारने की जरूरत ही नहीं है। असलियत में ये सारे बातें जो हमने कहा, तीन पॉइंट्स कहा, या किसका किस प्रकार हिरण्यकश्यपु विष्णु के बारे में धारणा रख रहा है, क्या था? सबसे पहला, उनको विष्णु के जो शरीर है धर्म से बना हुआ है, ये धर्म को नष्ट कर दो, तो ये पहला बात था, ताकि विष्णु का शरीर ही नष्ट हो जाए, ये सोच रहा था। दूसरा बात सोच रहा था कि मैं उसको ढूंढ ढूंढ के निकलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मेरे से डर के छुप गया है, लेकिन उनके जो प्रिय भक्त जन है, देवऋषि है, पितृ है, भूतानाम, इन सबको जाके मारो। इन सबको जैसे मारेंगे उनको तकलीफ होगा, तो क्या होगा? विष्णु अपने आप प्रकट होगा, उसको मैं पकड़ के मार सकता हूं। और तीसरा बात यह है, धर्मस्य च परायणः, ये परायणः टेकन शेल्टर, ये कौन है? विष्णु और अन्य देवता लोग जो है, जब यज्ञ किया जाता है, वो यज्ञ के आहार के ऊपर आधारित होकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसलिए अगर यज्ञ ही बंद हो जाए, अगर सब कुछ इन लोगों का ब्राह्मणों के द्वारा विष्णु को भोजन देना, अर्पण करना बंद हो जाए, विष्णु जो है मुखा भूखा मर जाएगा। तो ये तीन धारणाएं ये हिरण्यकश्यपु के मन में था। तो असुर मतलब जो व्यक्ति इस प्रकार की धारणा रखता है। तो इसलिए आज हम ये श्लोक का चर्चा करेंगे जो असुरत्व की भावनाओं को व्यक्त किया जा रहा है। अगर पूछा जाए किसी से असुर कौन है, हु इज अ डेमन, तो उसका अगर वर्णन करना है तो ये श्लोक फर्स्ट क्लास श्लोक है, जो हु इज अ डेमन, इफ यू वांट टू एक्सप्लेन व्हाट इज हिज मेंटालिटी। तो सबसे पहला है विष्णु द्विजक क्रिया मूलो। अभी हिरण्यकश्यपु ये फर्स्ट क्लास जानते हैं इस बात को, ये तत्व को, कि विष्णु द्विजक क्रिया मूलो, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ब्राह्मणिकल कल्चर इज टू सैटिस्फाई लॉर्ड विष्णु। यानी ब्राह्मणों का, ब्राह्मण संस्कृति का ये मूल है विष्णु को प्रसन्न करना। विष्णु द्विज क्रिया मूल, द्विज मतलब ब्राह्मण, यानी ब्राह्मणों का जो क्रिया है वो क्रिया का मूल क्या है? विष्णु को संतुष्ट करना, हाउ टू सैटिस्फाई विष्णु। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जो ब्राह्मणों के क्रियाकांड को करते हैं, लेकिन उनको ये बात नहीं मालूम कि ये यज्ञ विधियों का संपन्न करने का मूल है विष्णु को संतुष्ट करना। अपना वर्णाश्रम धर्म को पालन करने का मुख्य अर्थ है, मुख्य कार्य है, मुख्य हेतु है विष्णु को संतुष्ट करना, कृष्ण को संतुष्ट करना। ये बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण हैं ये बात को नहीं जानते। यानी दूसरे शब्दों में ये जो ब्राह्मण जो अनेकों प्रकार की यज्ञ की विधि कार्य वगैरह करते हैं, लेकिन इस बात को नहीं जानते, वो हिरण्यकश्यप से भी गए गुजरे हैं। आजकल कलयुग के जो ब्राह्मण हैं वो तथाकथित ब्राह्मण हैं, वो नाना प्रकार की क्रियाकांड वगैरह करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनेकों देवी देवताओं का पूजा करते हैं, लेकिन उनको ये बात भी नहीं मालूम जो हिरण्यकश्यप को मालूम था। ऐसे कुछ दिन पहले या ऐसा चर्चा चल रहा था कि जब हनुमान लंका की ओर गए, लंका को देख के उनको इतना आश्चर्य लगा, इतना सुंदर लंका है, सो ब्यूटीफुल लंका, सोने का बना हुआ लंका, सुंदर रोड्स थे और हर चीज व्यवस्थित रूप में था, और हर एक घर जो है वो खुले छोड़ के जब बाहर निकलते थे लोग, कोई उनको घर लॉक करके बाहर नहीं आने की जरूरत था। तो हनुमान इस बात को देख के आश्चर्यचकित हो गया, है ऐसे कैसे, इतना अच्छा राजा है, किसी को भी जरा सा भी कोई तकलीफ ही नहीं है लंका में, कोई व्यक्ति के हृदय में कोई डर नामक चीज था ही नहीं। तो उस समय उसके ऊपर कमेंट किया गया था, ये लंका का इतना सुंदर शासन, इतना सुंदर व्यवस्था था, हनुमान को भी थोड़ा सा शंका आई, ये इतना सुंदर व्यवस्था क्या असुर कर सकता है क्या? तो इसके ऊपर एक कमेंट ऐसा है कि आजकल कोई बोलता है कि रावण राज्य है, आजकल रावण राज्य भी नहीं है, अगर रावण राज्य होता लंका जैसा, कम से कम अच्छा रोड तो होता, हर चीज व्यवस्थित तरीके से होता, इधर कोई व्यवस्था नहीं है। रावण राज्य भी नहीं, राम राज की तो बात बाकी बात है। तो आजकल जो असुर अपने आप के रूप में, अपने आप को असुर के रूप में प्रस्तुत करते, साइंटिस्ट के रूप में हो या अनेकों लोगों के रूप में, या असुरत्व को हम निंदा करते कलयुग में, ये असुरत्व इस प्रकार हिरण्य को, जो कृष्णु को कम से कम ज्ञान था ये बात, एटलीस्ट ही न्यू दैट कृष्णा इज सुप्रीम लॉर्ड, भगवान जो है वो उनसे सब कुछ है, और ये सारे इतने ब्राह्मण है वो सब विष्णु को संतुष्ट करने के लिए अपना कार्य करते हैं। इसलिए विष्णु पुराण में कहा गया है, विष्णु आराध्य दे पंतर नान्य तत्तोष कारणम, ये जो वर्णाश्रम धर्म है, यज्ञ की विधि वगैरह है, ये इसका मूल उद्देश्य है क्या है, विष्णु को संतुष्ट करना, नान्यत, इसके अलावा और कोई उद्देश्य ही नहीं है। तो ये ज्ञान था किनको, हिरण्यकश्यपु को, ही न्यू परफेक्टली वेल दैट विष्णु द्विज क्रिया मूलो, और बाद में इतना मालूम था, ही ऑल्सो न्यू, ये विष्णु का तत्व भी जानता था, ही न्यू हिरण्यकश्यपु कौन है, विष्णु यज्ञो यज्ञ धर्ममय, ये पुमान, पुमान मतलब संस्कृत में जो महान व्यक्ति है उसको पुमान कहा जाता है, जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति उसको पुमान कहा जाता है। अब ये भगवान को हिरण्यकश्यपु तीन शब्दों के द्वारा संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि पहला लाइन में उन्होंने विष्णु कहा, ये विष्णु है कौन, वो तत्व का भी निरूपण कर रहे हैं, विष्णु कोई आलतू फालतू व्यक्ति नहीं है, हिरण्यकश्यपु स्वयं प्रवचन में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो पुमान है, वो महान व्यक्ति है। अभी वो महान व्यक्ति भी है, साथ साथ में कौन है, यज्ञ, कृष्ण का एक नाम है, विष्णु का नाम है यज्ञ, यज्ञो वै सह, शास्त्रों में कहा गया है कि वन ऑफ द नेम्स ऑफ कृष्ण इज यज्ञ, लाइक जैसे भगवद गीता में एक श्लोक आता है, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर। तो इधर हिरण्यकश्यपु इस बात को जानते थे कि श्लोक को, भगवदगीता का एक श्लोक जानते थे जहां भगवान को यज्ञ कहा गया है, वन ऑफ द नेम्स ऑफ कृष्ण इज यज्ञ, वो श्लोक में यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, वो श्लोक में जो यज्ञ शब्द है वो कृष्ण का एक नाम है, इट इज अ नेम ऑफ कृष्ण, यानी कृष्णार्थात कर्मणोन्यत्र, यानी कर्म करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, अर्थात कृष्ण की, अर्थात कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना है, लेकिन कृष्ण का नाम क्या रखा, यज्ञ है, क्यों है, क्योंकि सारे यज्ञ केवल उनकी संतुष्टि के लिए किया गया, इसलिए वो यज्ञ पुरुष, वन ऑफ द नेम्स ऑफ कृष्ण इज यज्ञ। तो इधर हिरण्यकश्यपु अपने ही स्वयं के प्रवचन में कह रहे, क्या कह रहे, कि वो विष्णु जो द्विजक्रिया मूलो, वो सारे द्विजों का ब्राह्मणिकल कल्चर का वो मूल है, उनको ही मूल मान के चला जाता है, इसलिए आत्ममूल, जैसे अनेकों प्रार्थनाओं में भगवान विष्णु को मूल माना गया है, इज अ सोर्स ऑफ एवरीथिंग, हर चीज माना गया है, हर चीज का रूप माना गया है। तो एनी हो, विष्णु द्विज क्रिया मूलो यज्ञो धर्ममय पुमान, और इतना भी नहीं, हिरण्यकश्यपु को मालूम था कि विष्णु कौन है, वो धर्ममय, वो पूरा उनका शरीर जो है वो धर्म से बना हुआ है, यानी जो भी क्रिया करेंगे वो धर्म संस्थापनार्थ है, ये कह रहा है। अभी इतना मालूम होने के बाद भी अगर विष्णु का शरीर पूरा धर्म से बना हुआ है, तो उनका जो बहिरंगिक रूप में जो इस प्रकार दिखाई पड़ रहा है वो भेदभाव करते हैं, ये भेदभाव भी, ये इस प्रकार का पक्षपात भी धर्ममय, ये बात सोचने में हिरण्यकश्यपु फेल हो गए। तो हिरण्यकश्यपु को मालूम था, क्या मालूम था, बहुत सारा ज्ञान है कि सारे ब्राह्मणिकल कल्चर का मूल विष्णु है, वो पुमान, वो धर्ममय है, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में प्रॉब्लम था, वो सोच रहा था कि ये धर्ममय है तो इससे उनको मैं नाश करूंगा, आई वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय हिम, वाई आई वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय हिम, मैं क्यों नाश करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे भाई को मारा और अपने देवताओं को, मेरे दुश्मनों को उन्होंने सहायता किया। तो कुछ ऐसे लोग हैं भगवत तत्व को जानते हैं, दे नो द फिलॉसफी, बट उनका जो उद्देश्य है, उनका जो गोल्स है उनके जीवन में, वो अलग होते हैं। ये भौतिक आसक्ति की वजह से भले ही उनको ज्ञान है, लेकिन वही ज्ञान जो है उसको उल्टा तरीके से समझते हैं। तो अभी आगे चल देखते हैं कि धर्ममयः पुमान, श्री प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं उनके उनके श्लोक में अनुवाद में कि द पर्सोनिफिकेशन ऑफ सैक्रिफाइसल एंड रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज, विष्णु इज अ पर्सोनिफाइड रिजर्वायर ऑफ ऑल रिलीजियस प्रिंसिपल्स एंड इज अ शेल्टर ऑफ ऑल द डेमीगॉड्स ऋषिज। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं कि इधर विष्णु को ये धर्ममयः ये क्यों संबोधित किया गया है, और उन्होंने जाके सारे जितने भी ब्राह्मण समाज को उनको नाश करने के लिए क्यों कहा गया है। तो हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया अपने सारे असुरों को, आप जाओ पृथ्वी में जाओ, जाके सबसे पहला क्या करो, अटैक करो किसके ऊपर, ब्राह्मण संस्कृति के ऊपर अटैक करो, ब्राह्मणों को मारो। जब यज्ञ हवन वगैरह करते रहेंगे उसके अंदर आप कचरे डाल दो, यज्ञ को उतना करना बंद कर दो। तो ये ब्राह्मण संस्कृति को, ब्राह्मणों को मारा जाए तो क्या होगा, क्षत्रिय जो है वो कमजोर हो जाते हैं, उनका शासन बहुत कमजोर हो जाता है। जब क्षत्रियों का शासन कमजोर होता है तो स्वाभाविक तरीके से वैश्य जो है वो समाज में शक्तिशाली बन जाएंगे, और जैसे वैश्य शक्तिशाली बनेंगे वो लोगों को शोषण करने लग जाएंगे। जब लोगों को शोषण करने लग जाएंगे, शूद्रों के ऊपर शोषण जब किया जाता है, जब सारे शूद्र इकट्ठा होते हैं और क्षत्रियों को या वैश्यों को वो मार देते हैं या उत्पात मचा देते हैं, और केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी ये जो वर्णाश्रम धर्म का आधार है ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्णाश्रम धर्म जो है ये बहुत सुंदर व्यवस्था है। तो लोग ये वर्णाश्रम धर्म के ऊपर बहुत सारे निंदा करते हुए कहते हैं कि अरे ये तो भगवान ने तो सबको समान बनाया है, ये मानव ने तो ये जाति बनाया। ये जो चार वर्ण है ये मानव ने नहीं बनाया है, ये भगवान ने ही बनाया है। जैसे कुछ तथाकथित ये स्वतंत्र आंदोलन में भाग लेने वाले या अन्य जो लोग हैं, जैसे हम फ्रीडम फाइटर्स है, जो नेशनलिस्टिक वाले हैं, वो कहते हैं कि भगवान ने सबको एक समान बनाया है और ये आदमी ने आके इस प्रकार कैस्टिज्म बनाया है। ये कैस्टिज्म आदमी ने नहीं बनाया है, ये भगवान ने ही बनाया है। ये एक सिस्टम जो है वर्णाश्रम धर्म, इसको मिसयूज जब किया जाता है, इसको दुरुपयोग किया जाता है, तब उसके गलत परिणाम होंगे। मिसयूज ऑफ ए सिस्टम डजंट मेक द सिस्टम यूजलेस। अगर कोई एक व्यवस्था है वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था, उसका दुरुपयोग के वजह से सारे दुष्कार्य हो रहे, इसका मतलब ये नहीं कि ये वर्णाश्रम धर्म की वजह से हो रहा है, वर्णाश्रम धर्म का दुरुपयोग से हो रहा है। लोग कहते हैं कि वर्णाश्रम का दुरुपयोग के इतना सारा चीजें हो रहा है, इसलिए वर्णाश्रम धर्म को ही त्याग कर दो, सारा प्रॉब्लम समझ। प्रॉब्लम वर्णाश्रम धर्म नहीं है, वर्णाश्रम धर्म का दुरुपयोग जो है वो प्रॉब्लम है। वर्णाश्रम का दुरुपयोग कहां से शुरू होता है? वर्णाश्रम धर्म का दुरुपयोग शुरू होता है जब ये वर्णाश्रम धर्म पालन करने का मूल उद्देश्य कृष्ण को संतुष्ट करना है, जब इस बात को भूल जाते हैं। When the society forgets the purpose of varnashram dharma is to satisfy Vishnu, then the misuse of varnashram starts. अगर कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हुए अगर वो सोचता है कि मेरा कर्तव्य है कृष्ण को संतुष्ट करना, कृष्ण को दासत्व करना, तो ब्राह्मण सोचता है कि मैं कृष्ण का सेवा शास्त्रों का पठन पाठन यजन याजन से करूंगा। क्षत्रिय सोचता है कि मैं अपना जो सामर्थ्य है उसके द्वारा लोगों को रक्षा प्रदान करते हुए कृष्ण का सेवा करूंगा। तो वैश्य भी अपने व्यापार के द्वारा सोचता है कि मैं कृष्ण का सेवा करूंगा, और शूद्र भी अपने अपने प्रवृत्तियों के अनुसार सेवा करते हुए सोचता है कि मैं कृष्ण का सेवा कर रहा हूं। तो ये वर्णाश्रम धर्म में विभिन्नता होने पर भी इसके अंदर एक समानता है। क्या समानता है? सभी लोग कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो दैवी वर्णाश्रम जब पालन किया जाता है उसके अंदर कोई सामाजिक दोष दिखाई नहीं पड़ता, सब लोग सुखी रहेंगे। सुखी ही नहीं बल्कि ब्राह्मण क्षत्रिय को या वैश्यों को इवन शूद्रों को भी बहुत इज्जत से आदर से देखेंगे, क्योंकि ब्राह्मणों को मालूम है अगर मैं उनको निंदा करूंगा, ये शूद्र अपना कार्य कर रहा है लेकिन किसके लिए कर रहा है, अंततः वो कृष्ण के लिए कर रहा है। अगर मैं नीचे दृष्टिकोण से देखूंगा को उसको मुझे अपराध लगेगा। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई ब्राह्मणत्व का कार्य कर रहा है, तो शास्त्रों को पढ़ना, उनको पढ़ाना, बड़े प्रवचन देना, उनको शिक्षा देना, ये कार्य कर रहा है, तो उन्होंने देखा कि एक शूद्र प्रवृत्ति वाला मंदिर का झाड़ू मार रहा है, तो उनको देखे अरे लो क्लास ऐसा बोल दिया तो क्या होगा, उसका अपराध होगा। क्यों अपराध होगा? क्योंकि ब्राह्मण को मालूम नहीं है कि वो झाड़ू ही मार रहा है, किसके लिए मार रहा है, वो कृष्ण के लिए मार रहा है। तो इसलिए दो प्रकार का वर्णाश्रम धर्म है, एक है दैवी वर्णाश्रम धर्म, दूसरा है असुरी वर्णाश्रम धर्म। तो ये दैवी वर्णाश्रम धर्म के द्वारा क्या हो रहा है, भले ही ये चार वर्णों के रूप में, चार आश्रमों के रूप में विभाजित है समाज, ये समाज विभाजित होने पर भी उसके अंदर एकत्व है। जैसे अंग्रेजी में कहावत है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब क्या है, विभिन्नत्व। हाँ, ये विभिन्नत्व में एकत्व कैसे आया है, जब हम ये पहचानेंगे कि सारे जितने भी वर्ण और आश्रम के लोग हैं वो किसका सेवा करने के लिए है, कृष्ण का सेवा करने। अगर ये एकत्व को अगर निकाला जाए, इफ यू रिमूव कृष्ण, तो तब वही जो वर्णाश्रम धर्म है, जो दैवी वर्णाश्रम धर्म क्या हो जाता है, वो असुरी वर्णाश्रम धर्म हो जाता है। तो ये असुरी वर्णाश्रम धर्म में क्या है, तो ब्राह्मण सोचता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं जानता हूं सारे शास्त्र को, मेरे पास इतने सारे वैराग्य है, वो है इतना तपस्या करने की शक्ति है, तो और वो क्या करता है, क्षत्रिय को नीचे दृष्टिकोण से देखता है। तब क्षत्रिय एक दो बार देखा कि ये ब्राह्मण अपने आप को बड़ा मान रहा है, अंततः ये इसके पास कोई सामर्थ्य नहीं, कोई शक्ति नहीं, अंततः मैं ही शासन करता हूं ना, शासन तो मेरे हाथ में है, तो इसलिए वो क्या करता है, ब्राह्मणों का भात स्वीकार नहीं करता है। ही विल नॉट हियर टू द ब्राह्मण, क्योंकि वो देख रहा है कि ये ब्राह्मण के अंदर अहंकार है, ये अहंकार की वजह से उनके क्या आया, उनके अंदर लोभ आया। जिस समय ब्राह्मणों के अंदर लोभ आता है या अहंकार आता है, उसी समय उनको अंदर लोभ आता है। जैसे लोभ आया तो क्या हुआ, वो लोभ को संतुष्ट करने के लिए क्षत्रियों को चापलूसी करना पड़ता है, और क्षत्रिय जो सोचते कि हाँ भाई मैं बड़ा हो गया हूं, और ब्राह्मणों को आदेश देना शुरू कर देते। और एक क्षत्रिय अपने आप को इस प्रकार बहुत अहंकार आते हुए वो शासन करना शुरू करते हैं, तब ये सारे वैश्य सोचते हैं कि ये क्षत्रिय जो है वो शासन कर रहा है, किसके बल के ऊपर शासन कर रहा है, वो मेरे पैसे के बल के ऊपर शासन कर रहा है। इसलिए वैश्य क्या सोचते हैं, हम क्षत्रियों को कंट्रोल करेंगे, हम पैसा देंगे, हम जैसा चाहिए ऐसा तुम शासन करो। तो क्षत्रु जो है वो क्या हो गया, वैश्य का बात सुनने लग गया। तो वैश्य लोग पूरा राज्य, पूरा संसार को कंट्रोल करते हैं, पूरा राज्य को। तो ये शूद्र सोचते हैं, ये जो वैश्य है मेरे ऊपर इतना ये कर रहा है, अंततः ये पैसा क्यों कमा रहा है, हमारी काम की वजह से कमा रहा है ना। इसलिए वो क्या सोचता है कि मैं कंट्रोल करूंगा, मैं जैसा बोलूंगा ऐसा होना चाहिए। इसलिए आप देखिए ये कलयुग के अंतर्गत पहले ब्राह्मण लोग क्षत्रियों का बात मानते थे, धीरे धीरे से क्या हुआ, ये राज्य पदवी के ऊपर क्षत्रिय आए, और कुछ समय के बाद क्या हुआ, क्षत्रिय जो है उनको कंट्रोल कौन करने लगे, व्यापारी लोग कंट्रोल करने लगे। अभी जो लोग ये पॉलिटिक्स का जो खबर रखते हैं, जो राजनीति आजकल चल रहा है विश्व में, पूरा विश्व में जो भी नेता लोग हैं वो कौन है भी आजकल मालूम है, सब वैश्य लोग है, दे आर ऑल वैश्यस। अभी धीरे धीरे से ये वैश्यों के हाथ से किसके हाथ में जा रहे हैं, शूद्रों के हाथ में जा रहे हैं। जैसे कोई फिल्म स्टार है, एक्टर है, वो कौन है, एक्टिंग कौन करता है, इनका शूद्र की प्रवृत्ति वही करता है, इनका कोई कोई शासन करना, कोई क्षत्रिय की या ब्राह्मण का कोई गुण नहीं है। दिखने में सुंदर है, या दो तीन पिक्चर में एक्टिंग किया है, या उसका हेयर स्टाइल कुछ अच्छा है, तो सब लोग उसको वाह वाह करने लगेंगे और वो उनको वोट देंगे। तो अभी शूद्रों का राज जा रहा है। तो इस प्रकार ये वर्णाश्रम धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाता है, वो कब भ्रष्ट होगा, जब ब्राह्मणों को नाश किया जाए। When Brahmins are destroyed, then there are no Kshatriyas. Kshatriya जो है वो यज्ञ वगैरह नहीं करेंगे। इस प्रकार हिरण्यकश्यपु ने ये प्लान बनाया था कि प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि इस सतयुग में हिरण्यकश्यपु ये ब्राह्मण समाज को नाश करने के लिए बहुत बड़ा प्लान बना रहा था, क्योंकि बहुत स्ट्रांग था वर्णाश्रम धर्म सतयुग, ये सतयुग की बात है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कलयुग में वैसे तो वर्णाश्रम धर्म है ही नहीं, देयर इज नो वर्णाश्रम धर्म एट ऑल, और ये ब्राह्मण समाज को नाश करना, ये सबको सवाल है, बहुत आसान है ये सब चीज करना, इट इज वेरी इजी। जो हिरण्यकशिपु बहुत प्रयास के द्वारा करना चाहता था सतयुग में, वो हिरण्यकशिपु को अभी अगर करना होगा कलयुग में, तो वो सोचता कि करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कलयुग के प्रभाव की वजह से सब है, इट इज ऑलरेडी देयर। तो धर्ममय, तो इसके पीछे और एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि भगवान का शरीर धर्म से भरा हुआ है, तो इसलिए मैं उनको नाश करूंगा, भगवान का शरीर को नाश करूंगा। ये दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाए, फिलोसॉफिकली, ये मायावादियों का प्रवृत्ति है। ये मायावादी लोग क्या करते हैं, भगवान का जो शरीर को नाश करना चाहते हैं, तो ये कहना चाहते हैं कि भगवान का कोई हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, वो निराकार है। तो हिरण्यकशिपु भी भगवान जो धर्ममय शरीर को नाश करना चाहता था, इसलिए कलयुग में ये भविष्यवाणी है, ये मायावादी लोग जो तथाकथित ब्राह्मण के कार्य करना चाहिए लेकिन उसको त्याग करके गलत अधर्म को प्रचार करना शुरू करते हैं, उस समय ये सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? ये तथाकथित जो नेता है उन लोगों का सहारा लेते हैं। ये नेताओं का सहारा लेते हुए कलयुग का जो कली है उसको प्रचार करते हैं, अधर्म को प्रचार करते हैं। आप देखिए जितने भी मायावादी लोग हैं वो किसके साथ साथ घूमते हैं, जितने भी पॉलिटिशियन लोग उनके साथ नहीं घूमते। अगर फोटो देखोगे कोई मायावादी व्यक्ति का, वो फोटो किसके साथ में रहेगा? कोई मायावादी के साथ में रहेगा। आप ये तो स्पष्ट रूप में मैं कहूंगा नहीं इन बातों को, लेकिन आप जो पेपर देखते वो जानते हैं, उनका केवल कनेक्शन ही पॉलिटिशियन लोगों के साथ में रहता है, क्योंकि ये पॉलिटिशियन लोगों को मालूम है कि अगर मैं ये तथाकथित जो असुरी व्यक्ति है, असुरी प्रवृत्तियों को धार्मिक वेश में जो प्रचार कर रहा है उसका सहारा लूंगा, तो लोग चाहते हैं, कलयुग का स्वभाव है लोगों को, वो चाहते अधर्म रहे, दे वॉन्ट रिलीजन, दैट इज वाई रिलीजियस पीपल इलेक्ट। तो एक जगह मैं लेक्चर में इस बात को कह रहा था कि एक व्यक्ति ने पूछा इतना अधर्म क्यों है, मैंने कहा कि अधर्म इसलिए है क्योंकि आप चाहते हो, तो बड़ा गुस्सा हो गया। क्या? तो क्यों? मैंने कहा कि ये जो राजनीति के ऊपर जो पॉलिटिशियन ये सीट के ऊपर बैठे हैं उसको किसने चुना? आपने ही चुना। तो अगर वो अधर्म है, अधर्म को पालन कर रहा है, तो आपने उनको वोट देके क्या किया? आपने अधर्म को सहयोग दिया। आपने वोट क्यों दिया? इसलिए दिया ताकि आप चाहते हो अधर्म रहे, बिकॉज यू वांट देयर शुड बी मटेरियलिज्म, दैट इज व्हाई यू गिव वोट टू हिम। अगर कोई कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को अगर खड़ा किया जाए, अगर उनके मत, उनका जो इलेक्शन प्रोपेगेंडा में कहेंगे कि मैं अगर शासन में आऊंगा, मैं सारे जितने भी जो मांस, किसको क्या बोलते हैं, स्लॉटर्स, कतलखाने हैं, उसको बंद कर दूंगा, और जितने भी वेश्याघर है उसको बंद कर दूंगा, और जितने भी दारू का दुकान है वो सब मैं बंद कर दूंगा, और सभी लोग नियमित रूप में अपना जीवन यापन करेंगे, ऐसा शासन करूंगा मैं, अगर उसका इलेक्शन प्रोपेगेंडा में बोला जाए, वोट मिलेगा उसको? उसको वोट कोई नहीं देगा। तो मैंने उनको ये बात कहा तो बेचारा वो चुप हो गया। Why you are electing that person? Because you don't want to be religious. That is why you are electing a religious person. आप चाहते हो। अगर सच में पूछा जाए, everybody in this world, they want to become religious. ऐसा स्थिति है। तो ये जो politician लोग सोचते हैं कि ये अगर सच्चा धार्मिक व्यक्ति का सहयोग दूंगा तो मुझे वोट नहीं मिलेगा, अभी मुझे झूठा धार्मिक व्यक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। जहां जहां नेता लोग या तथाकथित पॉलिटिशियंस आप देखते हो एक साधु के साथ ज्यादा घूम रहे, इसका मतलब वो साधु जो है वो केवल नाम के वास्ते साधु है, वो अधर्म का ही प्रचारक है, और दोनों मिले हुए हैं। भविष्य पुराण में वर्णन है कि कलयुग का प्रचार ये धार्मिक वेश में, वेशभूषा में जो कली के प्रतिनिधि है वो क्या करेंगे, वो धार्मिक वेशभूषा धारण करेंगे और नेताओं का, पॉलिटिशियन लोगों का सहारा लेंगे और अधर्म का प्रचार करेंगे। तो आप देखिए, जहां जहां भी अधर्म का प्रचार हो रहा है, इन दोनों का सहयोग है। किसका है? जो कलयुग के प्रतिनिधि, जो ये लोग धार्मिक वेशभूषा धारण किए हैं, और पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन को चाहिए वोट और इनको चाहिए धर्म का, अधर्म का प्रचार। ये दोनों बराबर हो रहा है। तो हिरण्यकश्यपु जिस प्रकार धर्ममय मयः, वो जानते थे भगवान जो है धर्म से बना हुआ उनका शरीर, उसको मैं अधर्म कर दूंगा, उसको उनको मैं नाश कर दूंगा। ये मायावादियों का प्रवृत्ति है। और दूसरा, देवऋषि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणम्। और देवऋषि, देवऋषि मतलब महान महान देवता, जैसे नारद ऋषि है, नारद मुनि है, और अन्य अन्य जितने भी भक्त लोग हैं, उनको मारो। उनको मारने के लिए क्यों कहा? एक तो ब्राह्मणों को मारने के लिए कहा, बाद में अन्य देवऋषियों को और पितरियों को मारने के लिए कहा। क्यों कहा उन्होंने? ताकि अगर ये किया जाए तो भगवान जो है भक्त वात्सल है। ये भी जानते थे हिरण्यकश्यपु कि विष्णु जो है भक्तों के बहुत प्रिय है। वो प्रिय होने के नाते कहीं भी अगर छुपा रहेगा वो बाहर प्रकट हो जाएगा। अगर बाहर आएगा तो मैं उनको मार दूंगा। ऐसे प्रभुपाद जी कहते थे, इफ यू वॉन्ट टू लव माई डॉग, अगर बच्चे को अगर तकलीफ देंगे तो तकलीफ किसको होता है? माँ को होता है, ठीक है। तो वैसे ही सर्वभूता नाम जितना भी जीव है वो सारे कृष्ण के बच्चे हैं, विष्णु के पुत्र है। तो अगर उनको तकलीफ होता है तो किसको तकलीफ होता है? विष्णु को तकलीफ होता है। वो तकलीफ के वजह से बाहर प्रकट होगा, मैं उसको पकड़ लूंगा। ये योजना से उन्होंने कहा कि सबको इनको दुख दो। और अंततः धर्मस्य परायणम, तो उन्होंने कहा कि इन दस डेमिगॉड्स नॉट बीइंग अपीस्ड बाय यज्ञ विल ऑटोमेटिकली डाई। तो इधर श्रीपाद मध्वाचार्य का एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक को कोट करते हैं प्रभुपाद जी, जो ब्रह्मांड पुराण से उद्धृत है। असुर लोग सोचते हैं कि भगवान जो है वो निर्भर करते हैं, ही इज डिपेंडेंट ऑन द यज्ञ सैक्रिफाइसेस। तो ऐसा उनका विचार रहता है कि जितने भी अन्य लोग हैं जो यज्ञ कर रहे हैं, वो यज्ञ में भगवान को जब आहुति दिया जाता है उसकी वजह से भगवान जीवित है। अगर उनका आहुति बंद हो जाए, भगवान भूखे रहेंगे और मर जाएंगे। लेकिन ये ब्रह्मांड पुराण का श्लोक कोट करते हैं श्रीपाद मध्वाचार्य, कहते हैं, ओ किंग, द डेमन्स थिंक दैट हरि, लॉर्ड विष्णु, एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ ब्राह्मणस एंड यज्ञस, बट फैक्चुअली हरि इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग इंक्लूडिंग ब्राह्मणस एंड यज्ञस। तो ये बात ये है, ये भागवतम में भगवान को कहा गया है, भगवान स्व आश्रय आश्रय, वो आश्रय तत्व है, वो किसी को ऊपर निर्भर नहीं करते। ये और एक असुरी भावना है, इसमें देवताओं के पास रहता है या असुरों के पास रहता है असुरत्व, ये सोचना कि भगवान विष्णु भी एक देवता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि परस्परम भावयन्ते न, ये मैंने यज्ञ का विधि को सृष्टि किया है, यज्ञ का विधि को सृष्टि करके मैंने क्या किया है, ये जितने भी लोग है, प्रजा है, सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाचा प्रजापति ही, मैंने यज्ञ की विधि को स्थापना किया है, स्थापना करके वो जितने भी जीव है वो सब यज्ञ करेंगे, देवताओं को प्रसन्न करेंगे, और देवता जैसे प्रसन्न होंगे, देवता लोग जो इष्टान भोगान ही देवान, जो इष्ट कामद्रक, जितना भी कामनाएं वो पूरा कर सकते हैं। तो देवताओं को चाहिए क्या है? वो यज्ञ चाहिए। और जीवों को क्या चाहिए? उनकी इच्छा पूर्ति चाहिए। तो देवता लोग जो है उनकी इच्छा पूर्ति करेंगे, और जितने भी जीव वो सब यज्ञ करके जो देवताओं को प्रसन्न करेंगे। तो इस प्रकार परस्परम भावयन्ते न, इस प्रकार परस्पर संबंध है देवता और जीवों के बीच में। इसको स्थापना करने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन असुर लोगों का विचार ऐसा रहता है कि ये विष्णु भी एक प्रकार का देवता ही है, तो इसलिए वो भी यज्ञ के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर ब्राह्मण लोग नहीं है, यज्ञ नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगा तो विष्णु को भूखा रहना पड़ेगा। भूखा कितना दिन रहेगा? वो मर जाएगा। यानी भगवान को देवता करके मानना ये भी असुरत्व है। टू कंसिडर Krishna to be one of the demigods is also a atheistic thinking. It is also a demoniac thinking. Tabhi Hiranyakashipu do prakar ke asuratva ko prastashit kar rahe. Ek mayavad, dusra hai Vishnu ko devata ke rup mein manna. These two things. Kyunki unko malum hai ki maan lijiye इंद्र को कोई भोग नहीं लगाया तो इंद्र गुस्सा हो जाएंगे, मुझे क्यों नहीं मिला। लेकिन अगर भगवान को अर्पण नहीं किया, भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्यों? वो आत्माराम है। भगवान आत्माराम है और एकदम पक्षपात जरा सा भी नहीं करते। ये सब सिद्धांतों को, कृष्ण तत्व को मूल रूप में नहीं जानता थे हिरण्यकश्यपु। तो इसलिए ये बात को ध्यान में रखना चाहिए। भले ही जो आज हमने जो चर्चा किया ये थोड़ा सा सिद्धांतिक लग सकता है, कठिन लग सकता है समझने के लिए, भक्तों को ये ध्यान में रखना चाहिए, अगर सिद्धांत को स्पष्ट रूप में अगर नहीं समझा जाए, अगर नहीं पढ़ा जाए, उसके अनुसार जीवन व्यापन नहीं किया जाए, भले ही भक्तों का वेशभूषा धारण भी क्यों ना करे, फिर भी असुरत की भावना हमारे अंदर रह जाती है। जैसे हिरण्यकश्यपु लग रहा है कि जानता है, लेकिन उनके अंदर जो दो असुरत्व की जो भावना, क्या है वो? एक ये सोचना कि भगवान इनको निराकार कर दूंगा, उनके शरीर को खत्म कर दूंगा, और दूसरा भगवान ये कौन है? वो देवताओं के समान है, ही इज इक्वल टू द डेमिगॉड्स। वो भी निर्भर करते हैं, क्योंकि वो भागवत के प्रसंग के अनुसार ये दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में इस बात को स्पष्ट रूप में कहा गया है कि कृष्णा इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। आध्यात्मिक, आदिभूत, आदि देव, ये तीन तत्व है, ये तीनों से परे है कृष्ण। किस प्रकार परे है? क्योंकि वो जो सिस्टम जो क्रिएट किए यज्ञ का, परस्परम भावयन्ते ना, वन हु क्रिएट्स द सिस्टम इज बियॉन्ड द सिस्टम, वन हु क्रिएट्स द लॉ इज बियॉन्ड द लॉ। जो जो लॉ को क्या बोलेंगे, जो नियम, जो कानून बनाते हैं, वो कानून से परे है। जो इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर परस्पर जो संबंध है वो बनाते हैं, वो दोनों से परे है। इसलिए देवता, भौतिक जगत और जीव, ये तीनों से परे है भगवान। देवताओं को कहा गया है कि आदिदेव, और जीवों को कहा गया आदिभूत कहा गया है। और इन तीनों के, दोनों के बीच में भेद क्या है? शरीर का भेद, यानी भौतिक तत्वों का भेद है। वो इनको कहा गया आदिभूत। तो आदिभूत, आदिदेव, आदिआत्मा, ये तीनों से परे है भगवान श्री कृष्ण। उदाहरण दिया जाता है सूर्य का। सूर्य कौन है? सूर्य की वजह से ही हम देख पाते हैं। अगर सूर्य नहीं है, हम नहीं देख पाएंगे। तो सूर्य के बिना हमारा जो आंख है वो व्यर्थ है। तो अगर आंख भी है, सूर्य भी है, हमारे अंदर देखने की इच्छा नहीं है, सूर्य का भी आंखों का दोनों का कोई काम ही नहीं है। हमारे अंदर देखने की इच्छा है, सूर्य भी है, लेकिन आंख नहीं है तो हम देख नहीं पाएंगे। यानी आंखों के बिना सूर्य का और हमारा अस्तित्व दोनों महत्व, दोनों का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए हमारे आंख और हमारी इच्छा, या हम खुद और सूर्य, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज इंडिपेंडेंट, एवरीबडी इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। लेकिन एक ही व्यक्ति है जो ये तीनों से परे है, ये तीनों जिनके ऊपर निर्भर करते हैं। वन हु मेड द डिपेंडेंसी इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द डिपेंडेंसी। तो ये उदाहरण के द्वारा श्रीमद् भागवतम में भगवान को ये स्थापित किया गया है। क्या है? आश्रय तत्व को स्थापित किया गया है। ही इज बीइंग प्रूव्ड एज अ भगवान स्व आश्रय आश्रय। अगर निर्भर करते हैं भगवान, so he is, if at all he is dependent on somebody, he is only dependent on himself. He is not dependent on any of the things of this world. Koi bhi aisa yagni ke upar, kisi ke upar bhi nirbhar karne ki zarurat nahi. Completely independent. So isliye agar sharan lena hi hai, to kis sharan lena hai? Krishna ka hi sharan lena hai. Kyon? You have to take shelter of Krishna. Kisi aur ke upar sharan lenge, wo khud kisi ke upar nirbhar karta hai. Jaise maan lijiye aapko kisi se dhan lena hai, तो वो धन लेना है तो वो बोलेगा मैं दूंगा, मेरा भी किसी और से लेना है तब दूंगा। तो वो पूछेगा वो मुझे कब दे रहे हो? नहीं नहीं मैं दूंगा आपको, लेकिन मुझे भी किसी और से लेना है। तो ऐसा स्थिति है, तो इसका पूरा इतना बड़ा चेन है, वो कभी आपको मिलने वाला नहीं है आपका धन। तो ऐसा व्यक्ति के ऊपर भरोसा करना जो धन देगा, जो किसी और से लेके देने वाला है तो मिलने वाला नहीं है कभी। तो वैसे ही किसी और के ऊपर शरण लेना जो खुद स्वयं किसका कोई ठिकाना नहीं है तो क्या फायदा। दैट इज वाई हिरण्यकश्यपु को ये हरि का जो स्थिति है वो नहीं मालूम कि वो संपूर्ण रूप में स्वतंत्र है, संपूर्ण रूप में संतुष्ट है, वो आत्माराम है, आप्त कामा, वो संपूर्ण रूप में सारे कामना उनको तृप्त हो चुका है। तो वैसे व्यक्ति कैसे निर्भर कर सकते हैं देवताओं की हमारी यज्ञ के ऊपर, नहीं निर्भर कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं कि ये हिरण्यकश्यपु जैसा प्रवृत्ति क्या है, सबसे पहला वो ब्राह्मणों की समाज को नाश करने की प्रवृत्ति है। तो अगर सच में धर्म को वापस विकसित करना है तो क्या करना होगा, ब्राह्मण समाज को खड़ा करना होगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरा संस्था का उद्देश्य एक ही है, पूरा विश्व में खाली 5% ब्राह्मणों को खड़ा करना। He just wanted 5% of the whole world to become Brahmins. तो ये आंदोलन का अनेकों उद्देश्य है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि पूरा समाज में प्रचार करना और 5% लोगों को ब्राह्मण बनाना। तो स्वाभाविक तरीके से अपने आप जो क्षत्रिय वैश्य अपने आप समाज खड़ा हो जाता है, वर्णाश्रम धर्म खड़ा हो जाता है। वर्णाश्रम जैसे आप बीज डालेंगे, जैसे अपने आप वृक्ष पैदा होता है, आपको समाज में ब्राह्मणों को बनाना है तो अपने आप वैश्य क्षत्रिय शुद्ध अपने आप हो जाएंगे। तो आजकल समाज में क्या प्रयास चल रहा है, शूद्रों की बनाने की प्रयास चल रहा है। दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक शूद्रस। तो सोचते हैं कि जितना ज्यादा शूद्रों को उत्पन्न करेंगे समाज उनका विकास होगा, समाज में अस्तव्यस्त और बढ़ता जाएगा। आपको जैसे स्कूल खड़ा करना है, स्कूल खड़ा करने के लिए कितना चपरासी को भेजो, कितना भी प्यून को भेजो, स्कूल नहीं बनेगा। आप एक प्रिंसिपल को भेजो तो अपने आप सब आ जाएगा। कोई भी शहर है, इवन भौतिक दृष्टिकोण से कह रहा हूं, शहर का निर्माण में अगर करना है, निर्माण करना है, सबसे पहला उधर जाके एक स्कूल खोलो या कॉलेज खोलो, अपने आप शहर बनेगा। इंडस्ट्री खोलने से शहर नहीं बनता है। जैसे आप देखो कि जहां जहां इंडस्ट्रीज है उधर वो समाज इतना अस्त व्यस्त है कि आप बोल ही नहीं सकते। जहां स्कूल और कॉलेज है स्वाभाविक तरीके से अपने आप सब विकसित हो जाते हैं। ये बहुत एकदम लो क्लास एग्जाम्पल दिया ताकि यही दिखाई पड़ रहा है हमको। वैसे ही अगर आपको अच्छा समाज चाहिए, आप एक ब्राह्मण को भेजो एक जगह तो अपने आप ये समाज जो है विकसित हो जाएगा। तो ब्राह्मण मतलब कौन है, जो शास्त्रों को जानते हैं और हरेक कार्य केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं और अत्यंत परम विरक्त है, कोई चीज से आसक्ति नहीं है, और केवल अगर दान भी लेते हैं तो केवल दान देने के लिए लेते हैं। तो ये ब्राह्मणिकल कल्चर है। तो परशुराम जी जब ये सृष्टि किए थे, इसका अपना स्पेशल सृष्टि है, तो पूरा भूमि को उन्होंने समुन्द्र से निकाला। निकालने के बाद उन्होंने सोचा इसको विकास करना है, इसको डेवलप करना है। तो उन्होंने क्या किया, विश्व में अनेकों महान महान ब्राह्मणों का जो समाज है उनमें से कुछ ब्राह्मणों को चुन चुन के उधर रखा उन्होंने, और जैसे उन्होंने उस जगह रखा तो क्या हुआ, अपने आप पूरा जो है विकसित होने लगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस कलयुग में ब्राह्मण समाज को स्थापना करना है तो कोई और यंत्रणा नहीं है, केवल एक ही रास्ता है, ये हरे कृष्ण महामंत्र। ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन के द्वारा ही ब्राह्मण समाज जो है वो विकसित होगा, जिसके द्वारा पूरा समाज ठीक होगा। तो आप कितना भी प्रयास करो क्षत्रियों के स्तर में, वैश्यों के स्तर में, तो लोग सोचते हैं कि एक समाज का विकास तभी होगा जब वैश्य समृद्ध रहेंगे। नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कोई व्यक्ति सोचता है कि नहीं, जहां क्षत्रियों का राज है उधर ही अच्छे तरीके से बराबर चलता है। नहीं, जहां ब्राह्मणों का स्थिति अच्छा है स्वाभाविक तरीके से अपने आप सब ठीक रहता है। तो ब्राह्मणों का कैसे समाज ठीक रहेगा, जब कीर्तन चलता रहेगा, शास्त्रों का अध्ययन चलता रहेगा, जहां पठन पाठन होगा, शास्त्रों का अच्छी तरह से अध्ययन होगा और शास्त्रों का अच्छी तरह से प्रचार होगा, तो स्वाभाविक तरीके से अपने आप भाग के आएंगे शूद्र और अपने आप भाग के आएंगे वैश्य, अपने आप भाग के आएंगे क्षत्रिय, सब कुछ संभालने के लिए। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कृष्ण। प्रभुपाद जी उन्होंने क्या किया, ही वॉज जस्ट अलोन, इज अ परफेक्ट ब्राह्मण, तो उन्होंने शास्त्रों का प्रचार करना शुरू किया। जैसे गुड़ होता है तो सारे मक्खियां अपने आप जम जाता है, तो अन्य प्रवृत्ति वाले आके संस्था खड़ा किए। तो इस बात को श्री प्रभुपाद जोर देते हैं, ही एम्फसाइजेस दिस पॉइंट दैट बाय चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र लॉर्ड चैतन्य इनॉग्रेटेड दिस हरे कृष्ण चैंटिंग द संकीर्तन यज्ञ विच कैन बी परफॉर्म बाय एनी वन हु एक्सेप्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये इस श्लोक के ऊपर जो भी हमको हमारे समझ में आया तो इसको थोड़ा सा सारांश रूप में कहेंगे कि हिरण्यकश्यपु ये श्लोक को उच्चारण कर रहे ये बताने के लिए कि कोई व्यक्ति अगर प्रश्न पूछे उनके अनुचरों में, विष्णु तो आपका भाई को मारा ना, तो आप जाके विष्णु को मारिए, तो हमको पृथ्वी के ओर क्यों भेज रहे इन लोगों को मारने के लिए, ब्राह्मणों को मारने के लिए। अगर ये प्रश्न पूछा जाए, उस प्रश्न का जवाब देते हुए हिरण्यकश्यपु कह रहे कि एक तो मैं उनको मारना चाहता हूं क्योंकि अभी तो मेरे सामने नहीं है विष्णु, तो सामने नहीं होने पर भी उनको मार सकता हूं, उनका शरीर को खत्म कर सकता हूं। क्यों? धर्म जो है, भगवान का शरीर जो है धर्म से बना हुआ है, तो इसको धर्म को संरक्षण करने वाले ब्राह्मण है उनको मारो, एक धर्ममय। दूसरा है देवता, और उन सबको भी मारो, सर्व उतानाम उनको भी मारो, तो क्यों? उसके द्वारा क्या होगा, भगवान बहुत दयालु हो जाएंगे और प्रकट हो जाएंगे, मैं उनको पकड़ के मार सकता हूं। और तीसरा, ये ब्राह्मण लोग आहुति चढ़ाते हुए यज्ञ करते हुए विष्णु को खिलाते हैं, इसलिए वो समृद्ध है। अगर ब्राह्मण लोग यज्ञ करना बंद कर देंगे तो विष्णु अपने आप मर जाएगा, मुझे जाने की जरूरत भी नहीं है मारने के लिए। तो इस प्रकार ये तीन प्रकार के जो गलत धारणाओं को या तीन प्रकार योजना बनाया, उन लोगों को कारण बताया, आप लोगों को पृथ्वी में जाके क्यों मारना चाहिए, व्हाई यू हैव टू डिस्ट्रॉय दिस ब्राह्मणिकल कल्चर। तो ये तीन बातों से हमने दो असुरी प्रवृत्तियों को प्रकाशित किया। एक है भगवान का शरीर को विनष्ट करना, ये मायावाद है। दूसरा, भगवान को देवताओं के स्तर में लाना। मान लीजिए भगवान का कृष्ण का स्तर ये है, जीवों का स्तर ये है। एक है नास्तिकतावाद, भगवान को उधर खत्म कर देना। दूसरा है भगवान को जीवों के स्तर में लाना। और तीसरा प्रकार का ज्ञान है जीवों को भगवान के स्तर में लेके जाना। थ्री काइंड्स ऑफ मिसकंसेप्शंस, टू डिस्ट्रॉय द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, टू ब्रिंग गॉड टू द लेवल ऑफ द लिविंग एंटिटी, टू ब्रिंग द लिविंग एंटिटी टू द लेवल ऑफ गॉड। ये तीनों प्रकार की जो अज्ञानता है या असुरों के अंदर रहता है। सो विल स्टॉप हियर, कोई जिज्ञासा कोई प्रश्न तो पूछिए। Yeah, that is how it is. Sun God, the eyes and desire. There is the desire includes the object. No? I have to see this. But I can only see through my eyes. I am dependent on my eyes to see. And not only I am dependent on my eyes, I am dependent on sun also. So, interdependence is there. See, there are no eyes. What is the use of the sun and my existence and myself? If there is no sun, even though you have eyes desire, you cannot see. Even though the sun is there and the eyes are there, you yourself don't have desire then. So in this way, three things. Matter, spirit, and the secondary controller of both. Secondary controller are the demigods. They are interdependent. Sun is Adideva. Adibhuta is the matter is, and Adiatma is the self, the living entity. That is a different context altogether. That is, Adiyajna is in the Bhagavad Gita where he asks a question, who is this Adiyajna? That ultimately refers to the Supreme Lord Krishna. But in this three, in the Bhagavatam, Bhagavatam is answer to all the questions. In this chapter, this point is mentioned. So, he was not knowing, Hiranyakashipu was not knowing that Krishna is completely independent. He is not dependent on these yajnas. Bhagavan ki bhakti, Bhagavan ki prasannata ke liye karte hai. इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं करेंगे वो अप्रसन्न हो जाएंगे. ही स्टिल हैप्पी, ही स्टिल प्लेइंग फ्लूट एंड हैप्पी विद गोपीस. वी डू इट फॉर आवर सेल्फ, मेरे लिए करता हूं. और कोई? इनका प्रश्न यह है कि जैसे कलयुग बढ़ रहा है तो भक्ति करना बहुत मुश्किल हो रहा है. 50 साल पूर्व तो और आसान था, अभी और. इस बात के ऊपर स्वयं मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य के 500 साल के बाद ऐसा एक भविष्यवाणी है कि 10,000 साल तक सतयुग होगा, स्वर्ण युग होगा, द गोल्डन एज. अभी गोल्डन एज शुरू हुआ है, हो गया है. यानी जैसे गोल्डन एज बढ़ता जाएगा भक्ति करना उतना आसान होगा. तो आप बोल सकते हैं कैसे? दिखाई नहीं पड़ रहा है. दिखाई पड़ रहा है कैसे? स्वयं अपना अनुभव कहता हूं. 1992 में जब इस्कॉन ज्वाइन किया था, मैं इस्कॉन के संपर्क में आया था. कुछ जो हमने सीखा था, सीखने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता था. मायापुर जाओ, उधर जाओ, उनसे पूछो, इनसे पूछो. 10 लोगों से पूछने के बाद भी एक प्रश्न का जवाब प्राप्त होता था, है कि नहीं? अभी मैं देखता हूं कि मुंबई में सब जिस प्रकार प्रचार हो रहा है, अभी लोग आपको शास्त्रों का ज्ञान हो, भक्ति का ज्ञान हो, संग देने के लिए इंतजार कर रहे. पीपल आर वेटिंग. आप बंबई में या कहीं भी जाओ दुनिया में, आपको प्रसाद मिलेगा. यू विल गेट प्रसाद. कोई ना कोई भक्त मिलेगा. 50 साल पूर्व वो नहीं था, ऐसा स्थिति नहीं था. इट इज नॉट द केस. ये हम कुछ देखते हैं, कुछ ऐसा भौतिकता बढ़ रहा है. भौतिकता तो अपने आप बढ़ता रहेगा, लेकिन दूसरी पक्ष में देखा जाए. कलकत्ता में जब मैं एक भक्त जो यूथ प्रीचिंग करते थे, वे कॉलेज में गए. वो कॉलेज में गए तो 10 लड़के लोग आके उनका छोटी खींचा, उनका धोती खींचा, इतना हंगामा परेशान कर दिया कि उनको उधर से भागना पड़ा, धोती पकड़ के भागना पड़ा. अभी वही कॉलेज में मैं पूछा था एक भक्त से, अभी भक्त लोग एकदम इज्जत से जाते हैं, रेस्पेक्टफुली जाते हैं, उधर प्रिंसिपल स्वागत करते हैं और सब अच्छा ऑडिटोरियम मैनेज करते हैं. जाओ प्रचार करो जादवपुर यूनिवर्सिटी कलकत्ता. आई वाज शॉक्ड. मैं मेरे साथ में एक भक्त गए थे, 1993 की बात है, 15 साल हुआ. 15 साल पूरे ऐसा स्थिति है, लेकिन वही कॉलेज में 15 साल के बाद कुछ और स्थिति है. अमाउंट ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना भगवद गीता बांटा जा रहा है, कितना भगवद गीता है, हर साल बढ़ते ही जा रहे हो, कम कहां हो रहा है? नहीं हो रहा है. मंदिरें बढ़ते ही जा रहे हो, कम नहीं हो रहे. भक्त लोग बढ़ते ही जा रहे, कम नहीं हो रहा है. तो इस बात के ऊपर मैं सहमत नहीं हूं कि स्वर्ण युग शुरू नहीं हुआ. वो हुआ है, इट हैज स्टार्टेड. कि मुझे कुछ एक सब्जेक्ट के ऊपर तैयारी करने के लिए 10 साल पहले नोट्स बनाने के लिए मुझे कितना संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अभी जो नया भक्त है आई पढ़ लेंगे, उसके अंदर ये प्रवचन है, अच्छा सब प्रवचन आके सुनते बैठ जाएंगे. और वही चीज को मुझे प्राप्त करने के लिए कम से कम मुझे दो तीन महीने लग जाता था, अभी एक दो दिन में प्रिपेयर कर लेता है भक्त। मुझे मालूम है भगवद गीता कोर्स जो मैं लेता हूँ उसको कंपाइल करके, उसको अध्ययन करके, उनको एक्सप्लेन कर, इसके लेक्चर तैयारी करने के लिए मुझे एक साल लगा। लेकिन वही अभी एक भक्त है, नया भक्त है जो ज्वाइन किया है, उसको एक महीना लगता है। टेक्स वन वीक ओनली फॉर हिम। और किसी से भी जाके कोई वो पूछेगा तुरंत उनको जवाब मिल जाता है। लेकिन नो, इट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। द गोल्डन एज हैज डेफिनेटली स्टार्टेड, डेफिनेटली स्टार्टेड। द मोर यू, द मोर द टाइम पासेस, द मोर इट इज ईजी फॉर अस फॉर डिवोशन सर्विस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। ब्राह्मण लोग अन्य लोगों का कार्य कर सकते हैं, दे कैन डू, लेकिन वो क्यों नहीं करते? क्योंकि महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ब्राह्मणिकल जॉब है कि नहीं? तो इसलिए हम देखते हैं कि शास्त्रों में जैसे परशुराम वो ब्राह्मण थे, लेकिन कुछ समय के लिए उनको क्षत्रिय का कार्य करना पड़ा, दे कैन डू, सारे प्रॉब्लम। जब वो देखते हैं कि ये समाज में इस प्रकार अस्त व्यस्त हो रहा है, क्षत्रियों के अभाव के, क्षत्रियों के स्तर में आएंगे, दे विल डू इट। चाणक्य भी उन्होंने कुछ समय के लिए किया, उन्होंने अपना शिखा खोल के वो महामात्य बने, तो फिर से जैसे वो धर्म की स्थापना क्षत्रिय को अपॉइंट हुआ, तुरंत वो अपना फिर वापस कुटिया में चले गए। तो एक बार प्रभुपाद से पूछा गया था कि प्रभुपाद जी आपको तो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए भारत का, ना कि आई विल नॉट बिकम द प्राइम मिनिस्टर, आई विल बिकम द गुरु ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, मैं वो प्राइम मिनिस्टर का गुरु बनूंगा। तो ये एक्सेप्टेड दैट पोजिशन। लेकिन अगर जैसे मंदिर है उन्होंने स्थापना किया, कभी कभी ऐसा कुछ भक्त लोग थे जो व्यवस्था को बना के नहीं रख पाते थे, दे वर नॉट एबल टू मेंटेन द, तब प्रभुपाद जी बार बार कहते थे प्लीज रिलीव मी आउट ऑफ दिस मैनेजिंग, आई वांट टू ट्रांसलेट। लेकिन फिर भी जब कोई अस्त व्यस्त होता था स्वयं वो बैठ के चेक साइन करते थे, सब कुछ व्यवस्था देखभाल करते थे। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम श्री प्रभुपाद की जय।